Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Netai Gaur Haribol, 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 Netai Gaur Haribol.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya. Ashtotar Shata Shri Srimad is Divine Grace Abhay Charan Arvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथेति सवनं गत्वा तथेति सवनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रांतो बुभुक्षितो वीरः श्रांतो बुभुक्षितो वीरः शशम चाददपस्मृतिः शशं चाददपस्मृतिः तथेति सवनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः मताजिस तथा तथा आदेशानुसार इति इस प्रकार सह विक्षुकी विकुक्षी वनम जंगल में गत्वा जाकर मृगान पशुओं को हत्वा मारकर क्रिया अर्हणान श्राद्ध उत्सव में यज्ञ करने के उपयुक्त श्रांतः थका हुआ बुभुक्षित तथा भूखा वीर वीर पुरुष शशम खरहे को यानी सच क्या बोल रहे रैबिट खरगोश को च भी आदत खाया अपस्मृति ही यह भूल गया कि यह माश्राद्ध के बलि के लिए है। आवाज नहीं आ रही क्या कोई रिस्पॉन्स आवाज नहीं आ रही पीछे नहीं लो वॉल्यूम यहां है कि यहां अनुवाद तथा तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु पुत्र विकुक्षी जंगल में गया और उसने श्राद्ध में बलि देने के लिए अनेक पशु मारे, किंतु जब वह थक गया और भूल गया भूला हुआ भूखा हुआ तो भूल से उसने मारे हुए एक खरहे को खा लिया। तात्पर्य स्पष्ट है कि क्षत्रिय लोग जंगल में जाकर पशुओं का वध करते थे, क्योंकि पशुओं का मांस विशेष प्रकार के यज्ञों में भेंट चढ़ाया जाता था। श्राद्ध भी एक प्रकार का यज्ञ है। इस यज्ञ में शिकार से प्राप्त किया गया मांस भेंट किया जा सकता था, लेकिन कलयुग में ऐसी भेंट चढ़ाना वर्जित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से उदाहरण देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलव पंच विवर्जयेत। इस कलि युग में पांच कर्म वर्जित है, यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को श्राद्ध में मांस भेंट करना तथा अपने अनुज की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। फल पैतृकम शब्द पितरों के श्राद्ध में मांस की बलि चढ़ाने का सूचक है। पहले ऐसी बलि की अनुमति दी जाती थी, किंतु इस युग में यह वर्जित है। कलयुग में हर व्यक्ति पशु का शिकार करने में पटु है, किंतु अधिकांश लोग क्षत्रिय न होकर शूद्र है। वैदिक आदेशानुसार क्षत्रिय ही शिकार कर सकते हैं, जबकि शूद्रों को देवी काली या अन्य देवताओं के अर्च विग्रह के समक्ष बकरे या अन्य शूद्र पशु की बलि देकर मांस खाने की अनुमति प्राप्त है। कुल मिलाकर यह कह जा सकता है कि मांस खाना सर्वथा वर्जित नहीं है। किसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को विविध परिस्थितियों में एवं आदेशों के अनुसार ही मांस खाने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जहां तक गो मांस खाने की बात है यह सर्वथा वर्जित है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण स्वयं गोरक्षम अर्थात गोरक्षा की बात कहते हैं। मांस खाने वालों को विभिन्न परिस्थितियों एवं शास्त्रों के निर्देशानुसार ही मांस खाने की अनुमति मिली है, लेकिन गो मांस की कदापि नहीं। गायों की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदांतिकं। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माए की जय। पिछले श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, जनवरी फरवरी तथा मार्च, भागवत में नहीं है ऐसा है, लेकिन उन महीनों का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं कि महीनों में पितरों को दिए जाने वाली भेंट अष्टका श्राद्ध कहलाती है। श्राद्ध उत्सव महीने के कृष्ण पक्ष में संपन्न किया जाता है। जब महाराज इक्ष्वाकु श्राद्ध उत्सव मना रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र विकुक्षी को आदेश दिया कि वह तुरंत जंगल में जाकर कुछ शुद्ध मांस ले आए। इस अध्याय का शीर्षक है सौभरी मुनि का पतन, और यहां पर वर्णन चल रहा है महाराज इक्ष्वाकु, इनके पुत्र विकुक्षी। तत्पश्चात इक्ष्वाकु पुत्र विकुक्षी जंगल में गया और उसने श्राद्ध में बलि देने के लिए अनेक पशु मारे, किंतु जब वह थक गया और भूखा हुआ तो भूल से उसने मारे हुए एक शशक यानी खरगोश को खा लिया। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक श्रीमद् भागवतम में है जिनको कॉन्ट्रोवर्शियल कहा जा सकता है, जबकि हम लोग बहुत जोर से बोलते हैं मांस भक्षण कभी नहीं करना। हमारे चार नियम प्रभुपाद ने लिखे हैं, पत्थर की लकीर है, कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। मांस नहीं खाना, व्यभिचार नहीं करना, नशापान नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। तो ऐसे होते हुए श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को अंतिम दिनों में बताया गया ऐसा पुराण, यहां पर मांस भक्षण की बात चल रही है। इसके पहले के श्लोकों में आप देखेंगे तो व्यभिचार की बात चल रही है। रथीतर की पत्नी में अंगिरा मुनि ने आकर पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि उनको पुत्र नहीं थे, इलिसिट सेक्स। ये सारी बातें इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इतनी विवादात्मक है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य इसका पूरा विवरण करते हैं और सारा जो भेद है हमें बता देते हैं। ये उनकी महानता है। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते ये तात्पर्य देने के लिए, तो क्या होता आज भी जो हो रहा है, जो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं पढ़ते, प्रभुपाद की संस्था से जुड़े नहीं है, आचार्यों के वाणी को नहीं सुनते, वो क्या करते हैं, पुराणों से कोई कोई बातें निकाल कर आज जो हम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से मान्यता प्राप्त करते हैं, ये बराबर कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन। और ऐसे बुद्धिमान लोग भी ऐसे करते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग भी इस प्रकार के जो कॉन्ट्रोवर्सी है उसको बराबर से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको अपने बुद्धि के प्रभाव से उसका जो गूढ़ तत्व है उसको नहीं समझ सकते। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है श्री भक्ति विनोद ठाकुर के समय पे बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, इतिहास में हमने उनका नाम पढ़ा है, राजा राम मोहन राय, वेरी फेमस, बहुत बुद्धिमान थे, यूज ए जीनियस। और भक्ति विनोद ठाकुर असल में उनके सामने कुछ नहीं थे सोशल स्टेटस में, लेकिन हम देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर उनकी वर्णन कैसे करता है। भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि उनको भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी वो जानते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या उनका वर्णन करते हैं ब्राह्मो समाज का और रामानंद राजा राम मोहन राय का, बहुत बड़ा उनका ऐसे है। लेकिन वो लिखते हैं, अंग्रेज में पढ़ूंगा फिर उसका अनुवाद करेंगे, Suffice to say that the Bhagavat did not attract the genius of Raja Ram Mohan Rai. Bhagavat ka unhone padhai kiya nahi, kyun wo soch rahe bahut controversial hai. His thought, mighty though it was, unfortunately, ye bahut sundar likha hua, unfortunately branched off like the Raniganj line of parent railway from the barren station of Shankaracharya and did not attempt for an extension from the terminus station of the great Bhagavad expounder of Nadia, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kitna sundar likha hai ki jaise ek railway line ja rahi hai, hum kahin ja rahe hain, wo likhte hain shuruaat kahan ki unhone Shankaracharya se, mayavad sab kuch jhoot hai jhoot hai. Ram Mohan Rai kya karte the, unhone prayas kiya ki yahan Shankaracharya bol rahe hain, wahan Jesus Christ ki vani hai, wahan Quran hai, sab padha unhone. और उन्होंने प्रयास किया कि क्यों नहीं ये सब चीजों को एकत्रित बना जाए, पैकेज. क्यों ये बुद्धि क्यों आई पैकेज बनाने के, क्योंकि हम चाहते हैं संसार में सब कुछ मिलजुल कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये गूढ़ तत्व नहीं जानते तब तक जो पुराणों में धर्मों में कॉन्ट्रेडिक्शंस है इनको हम सुलझा नहीं सकते. इट इज इम्पॉसिबल. ओनली ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल अच्छी तरह सुलझाए, श्रील प्रभुपाद ने किए, भक्ति विनोद ठाकुर ने किए. तो लिखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने शंकराचार्य के बैरन उजड़ा हुआ स्टेशन, वहां से एक रेलवे लाइन निकाली हाँ अपने समाज की, ब्राह्मो समाज के, और इस प्रकार से जाते जाते वेदों को छोड़कर वो रानीगंज लाइन की तरह एक तरफ चले गए. उसका कोई कहा नहीं, वो एंड हो गई, वहां पर खत्म हो गई. आज ब्रह्मो समाज का यह कहां है खत्म हो गया वो. बिकॉज वो बोलते क्यों, क्योंकि उन्होंने ये प्रयास नहीं किया उसको, उस लाइन को, नाडिया के भागवत धर्म के जो प्रसिद्ध व्यक्ति है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, माय पंडित, उनकी लाइन से जोड़ा जाए. ही फॉरगॉट फॉर एन एक्सटेंशन फ्रॉम टर्मिनल स्टेशन ऑफ ग्रेट भागवत एक्सपाउंडर ऑफ नाडिया. तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े महान बुद्धिवादी लोग, जैसे यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीनियस था, ही वॉज अ वेरी जीनियस पर्सन, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने आश्रय लिया नहीं गुरु परंपरा का, आश्रय लिया नहीं वैष्णवों के आचार्यों का, इसलिए ये भागवत उनको बहुत कंफ्यूजिंग लगा. आज भी हम ये श्लोक पढ़ेंगे तो कोई भी बोलेगा क्यों ना मांस खाया जाए, व्हाट इज रॉन्ग, उसने खरगोश खाया, मैं शायद कुछ छोटा मोटा और बिल्कुल साधारण पशु खा लूंगा क्या बात है, यू कैन जस्टिफाई. श्रील प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं तीन प्रकार से वो पशु खाने के बारे में बात करते हैं. एक तो कहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में देश काल पात्र के अनुसार मांस भक्षण विवर्जित नहीं है. कौन सा देश काल पात्र, काल कौन सा है, वो कलयुग नहीं था पहली बात, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों की शक्ति ऐसी थी कि ब्राह्मण अपने मंत्र शक्ति द्वारा जो प्राणियों को यज्ञ में डाला जाता था उनको पूरा नया जीवन दे सकते थे. उनको जो उत्क्रांति हो रही है प्राणियों की अलग अलग योनियों में से, उससे उठाकर सीधे मनुष्य योनि में डाल सकते हैं, ये उनकी ताकत थी. तो उनका जो बलि देव जब प्राणी थे उनका भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता था, और जो यज्ञ है वो भी शास्त्रोक्त थे. असल में अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण, होता, उद्गाता, ब्रह्मा, ये प्रकार के ब्राह्मण होते हैं जिनका एक एक काम होता है. कोई व्यक्ति केवल मंत्रोच्चार करेंगे, कोई केवल घी डालेंगे, कोई उसकी व्यवस्था देखेंगे परफेक्ट, और उसके बाद में मंत्रोच्चार से वो पहले जानवर को डालते थे, पहले देखते थे कि जानवर जिंदा होता है कि नहीं पहले, उसके बाद बलि बलि दी जाती थी। लेकिन आज ऐसे ब्राह्मण नहीं है, ना ही आज ऐसे क्षत्रिय है। असल में क्षत्रिय है ही नहीं, कलयुग में ज्यादा करके लोग शूद्र वंश में जन्म लेते, शूद्र वर्ण में, भले उनकी जाति कुछ भी हो लेकिन जन्म ना जाते शूद्र हो, वो जन्म से शूद्र ही रहते हैं। संस्कार होने के बाद कुछ बन सकते हैं। तो शूद्रों के लिए भी श्रील प्रभुपाद यहां कहते हैं, कभी कभी महीने में एक बार काली के सामने बकरा अमावस्या के दिन उसको आप बलि चढ़ा सकते हैं, लेकिन मांस भक्षण इसको भी इस प्रकार से शास्त्रोक्त बना दिया है और उसके सामने उसके मंत्र बोलना है, उसके कान में उसका एक शब्द श्री प्रभुपाद बोलते हैं मांसह मांस, मांस भक्षण है, कहां से शब्द आता है मांसह, यानी कि उसके कान में बकरे में, आज मैं आपको मार रहा हूं, अगले जन्म में आप मुझे मार डालो और इसी प्रकार से खाओ। तो बाद में आदमी सोचता है, अरे बाद में मांसह मांस बोल बोल के वो सोचने लगता है, बुद्धि आती है कि अरे ये ऐसे में क्या कर रहा हूं, क्यों मुझे वापस मरना है इस प्रकार से, उससे अच्छा चावल दाल खाओ। तो ये रेगुलेशन इसलिए बनाए हैं ताकि अल्टीमेटली आखिर में हम इस स्थिति पर आ जाए कि किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करें। लेकिन मांस भक्षण करते, प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में खास करके ये बात बताई कि why they want to kill cows, गाय को क्यों मार रहे हैं, मारना ही है तो बकरा बाकी आदि पशुओं को मारो, चिकन गोट, लेकिन गाय को मत मारो, नेवर ए काउ। हम देखेंगे शास्त्रों से कि गाय के लिए का लोग अपनी जान देते थे, अगर गाय को एक मार रहा है तो क्षत्रिय राजा अपनी जान दे देता था, यह गाय का महत्व है। एक राजा थे, अभी ये तो 500-600 साल पहले की बात है, महाराणा प्रताप के वंशज या शायद वही होंगे, उनकी कालावधि में वो राजमहल के आसपास के गांव में एक गाय वो कहीं अटक गई, उसका उसके जो सिंग है वो ऐसी जगह पे अटक गए कि वो निकाल नहीं सकते, कोई भी निकाल नहीं सकते, गाय बहुत तड़प रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, सारा गांव इकट्ठा हो गया, कैसे गाय को निकाला जाए। और तभी गांव में से एक लड़का, जवान लड़का, उसने बोला अरे गाय के सिंग काट दो वो निकल जाएगी। तो सब लोग सोच रहे बराबर बोल रहा है ये, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि गाय के सिंग को काटना है। और फिर उन्होंने जिस चीज में अटकी थी वो आयरन गेट में, उसको कैसे भी करके तोड़ के गाय को निकाला। लेकिन ये बात राजा तक पहुंची कि अमुक बच्चे ने यह बताया, जवान लड़के ने, कि गाय के सिंग काट दो। तो वो सोच रहे ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन ही थिंक लाइक दिस, कि गाय के सिंग को काट दो, ऐसी बात उसके मन में आई कैसे। तो उसने उसकी माता को बुलाया, सीधे सीधे पूछा, क्षत्रिय राजा थे, उनके जांच करना उनका कार्य था, बोले बच्चा किसका है। माता तो हिंदू थी, संस्कृतिवान थी, बोला किसका बताए, मेरे पति का बच्चा है, कोई व्यभिचार नहीं किया मैंने, लेकिन फिर ये ऐसे कैसे सोच सकता था कि इसके गाय के सिंग काटो। तभी उसने कहा कि मुझे याद है, मैं जब मेरे घर के पहले मंजिल पे थी तभी मैंने एक मुसलमान को बकरे को काटते हुए देखा था, जब मैं गर्भावस्था में थी और ये बच्चा गर्भ में था। उसके कारण शायद इसके मन में यह बात आई है। मतलब आप सभी को गहराई से सोचो कि ये बात कितनी घृणात्मक है कि केवल वो दृष्टिपात हो गया उसका जो गाय को खाता है, उसके कारण उसके मन में यह बात आ गई। और राजा भी वो सोच रहा था कि ऐसे मेरे राज्य में कैसे हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे सोच सकता है कि गाय के सिंग काटे। अभी गाय के सिंग काटने दो, अभी गाय को ही काटा जाता है हजारों में। दैट इज द स्टेट टुडे। कहां वो राजा और कहां आज के राजनीतिक लोग। उसी प्रकार से और एक बात आती है, वैवस्वत मुनु के पुत्र, उनके 10 पुत्र थे। तो वैवस्वत मुनु उनके गुरु थे वशिष्ठ। तो वशिष्ठ उनके बहुत गाय थी, उनमें अपने शिष्य को प्रिशार्ध उसको बताया कि आप जाके रात को पहरा देना ताकि कोई शेर आकर गाय को खा नहीं, और रात भर विरासन में बैठकर पहरा देता था। और एक दिन घने अंधेरे में एक शेर आ गया और शेर ने गाय को खाना शुरू किया, तो सारी गायें चिल्लाने लगी। तुरंत ये खड़ा होकर भागने लगा और उसने जोर से प्रहार करके उस शेर को मार डाला, गर्दन काट दी उसकी। लेकिन सवेरे उठ के देखता है तो क्या है, उसने गाय की गर्दन काट दी थी। तो बहुत दुख हो गया और वशिष्ठ के सामने जाकर बोला कि मेरे हाथ से ऐसे घोर पाप हो गया। तो वशिष्ठ ने ऐसे नहीं कि गलती से हो गया कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, गो हत्या का पाप यानी कि हजारों ब्राह्मणों को मारने की तरह पाप है। एक गाय को मारना यानी हजारों ब्राह्मणों को मारने जैसा है, ये गो हत्या का पाप है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें शाप देता हूं, असल में हुई है गलती, उसने अंधेरे में देखा नहीं है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अगले जन्म में तुम एक शूद्र बन जाओगे, बहुत निचला जीवन आपको जीना पड़ेगा। अब ये शापित व्यक्ति हो गए, उनको बहुत दुख लगा। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि कोई बात नहीं शूद्र बन जाएगा उसमें क्या है, नहीं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे, बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उत्तम श्रेणी के लोग थे। तो प्रिशार्ध ने सोचा कि अभी मेरे जीवन में कोई बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। उन्होंने राज को त्याग दे दिया और जंगल में जाकर वो केवल एक ही बात अपने जीवन भर के सारे लोगों को, सारे प्राणी मात्रों को एक दृष्टि से देख रहे, मैं सबका मैं सेवक हूं, ये सारे जीव जो है भगवान के अंश में उनका सेवक हूं। और इस प्रकार के वासुदेव की जो भक्ति है पूरे जीवन भर की, और उसके बाद में इतने शुद्ध हो गए कि एक दिन जब जंगल में आग लग गई तो उस आग में प्रवेश कर लिया उन्होंने, अपना जीवन त्याग दिया। लेकिन आगे क्या हुआ, वो शूद्र बने नहीं, सीधे भगवत धाम गए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सीधे भगवत धाम। ये भक्ति का प्रभाव है, भक्ति गो हत्या से भी आदमी को बाहर निकाल सकती है। इस बात को प्रभुपाद अच्छी तरह से जानते थे, चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह से जानते थे, और इसीलिए महाप्रभु के जो महाप्रभु का आंदोलन है इसमें हम देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने कभी मुसलमानों का भी धिक्कार नहीं किया जो गाय को खाते थे। असल में पठान मुसलमान इनको शिष्य बनाया, आज भी पठान वैष्णव है, पठान है लेकिन वैष्णव है आज भी है। तो चैतन्य महाप्रभु जब नाडिया में रहते थे, नवद्वीप में रहते थे, उस समय उन्होंने जब संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, सारे भक्तों को कहा, रात को तो संकीर्तन होता था घर में प्राइवेट, लेकिन दिन में हरिनाम सबको बांटने के लिए जगह जगह नगर संकीर्तन होता था। भक्ति विनोद ठाकुर उसका सुंदर गीत गाते हैं, उड़ी लो अरुण पूरब भागे द्विज मणि गोरा जम अमनि जागे, द्विज मणि ब्राह्मणों के जमणि चैतन्य महाप्रभु। ये सुबह उठकर क्या करते थे, जैसे अरुण चंद्रोदय सूर्योदय होता तो क्या करते थे, नगर नगर जाकर भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग देखने को आते थे कैसे निमाय नृत्य करता है, कैसे गाता है मधुर वाणी से, और इतने हजारों की संख्या में लोग आने लगे कि जो कर्मठ ब्राह्मण थे वो और मुसलमान राजा लोग, ये सब लोग डर गए, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा नया राजा आया गया, इट वाज़ द किंग ऑफ नाडिया चैतन्य महाप्रभु, बोले कौन सा नया राजा आ गया, सारी जनता उसके पीछे पागल हो रही है। तो वहां से काजी चांद काजी, उसने क्या किया, अपने सैनिकों को बताया जाओ जहां जहां संकेत है उसको तोड़ डालो, उसको रोको। और जो सनातनी ब्राह्मण थे, कर्मठ ब्राह्मण थे, वो भी यही सोचते थे कि निमाय क्या अपने आप को सोचता है, ये कहां लिखा है शास्त्रों में कि ऐसे वेदों के जो श्लोक है, वेदों के जो मंत्र है सारी प्रजा को दिया जाए, कहां लिखा है, ये गुप्त रहने चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सारी जनता को दे दिया। उनका अवतार ही इसीलिए है, जो कृष्ण प्रेम महान मुनियों के लिए भी असंभव था, वो गोमांस भक्षी लोगों को भी प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आ गए। ये इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं, नमो महावदन्याय। महावदन्याय में छोटी मोटी बात नहीं है, कृष्ण भी उनके सामने फीके हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम, मुझे शरण आ जाओ फिर मैं आपको पापों से मुक्ति दूंगा। केवल मुक्ति, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, शरण मत आओ, नो प्रॉब्लम, आप शरण भी नहीं आओ, केवल हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, बस आई विल गिव यू कृष्ण प्रेम। दिस इज वाई इज नमो महावदन्याय। तो चांद काजी ने जब प्रयास किया और एक दिन आकर मृदंग तोड़ दिया, खोला, तोड़ दिया, भंग कर दिया उसको, सारे भक्त बहुत खेद से आकर चैतन्य महाप्रभु को बोले, निमाय पंडित को क्या हो रहा है, हम डर रहे हैं, ये सारे सैनिक हमें आकर रोकते हैं, हमें कहते कि तुम्हारा घर हम गंगा में फेंक देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, हम डर रहे हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों से, चलो कल हम उसके घर जाएंगे, सारे लोगों को बुलाओ। और फिर शाम के समय मशालों को लेकर हजारों की संख्या में लोग निकल पड़े और निमाय पंडित के घर से चांद काजी के घर तक, जब तक वो पहुंचे गली गली में से, तो हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार, लाखों लोग उसमें शामिल हो गए। और उनकी वृत्ति क्या थी, क्योंकि जब इतने सब लोग साथ में आते तो क्या सोचते हो, अभी हम किसी को भी दंडित कर सकते, चांद काजी कौन है कि नहीं, काजी को मारो। सब लोग इस प्रकार के घोषणा देते देते सब जा रहे हैं, और चांद काजी के घर के सामने सब लोग आ गए, जो जहां देखते वहां लोग ही दिख रहे हैं उसको। चांद काजी छुप कर देख रहा है, वो डर गया, दरवाजा बंद करके बैठ गया। तभी चैतन्य महाप्रभु जाके बोले, अरे काजी तुम छुप गए, मैं आई एम योर गेस्ट, मैं आपका अतिथि हूं और अतिथि को इस प्रकार से स्वागत नहीं किया जाता। तभी फिर चांद काजी ने दरवाजा खोला, उनको बुला लिया अंदर और बोलने लगे कि असल में मैं डर गया था, क्योंकि आपके इतने सारे लोग हैं और आप बहुत गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन अभी आप शांत हो गए इसलिए मैंने अंदर ले लिया आपको। और असल में नीलांबर चक्रवर्ती मेरे भी चाचा की तरह थे, तो उस हिसाब से आप गांव के हिसाब से मेरे भतीजे हो, सारे लोग आपको गौरहरी बोलते हैं, मैं भी आपको गौरहरी बोलूंगा, देखो कैसे पॉलिटिकल। बोले सारे लोग आपको गौरहरी बोलते हैं, मैं भी क्या मैं गौरहरी बोल सकता हूं। तो मेरे प्यारे गौरहरी आप सुनो कि ऐसा है कि हमारा ये जो तुम्हारा संकीर्तन है उसको चलने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निमाय पंडित ने पूछा, अच्छा लेकिन मुझे ये बताओ ऐसे कैसे हो गया, कल परसों तक तो सब लोग आके रोकते थे मारते थे, और अचानक आप आजकल आप कुछ नहीं करते। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक दिन जाकर वो मृदंग को तोड़ दिया, उसके बाद उसी रात को जब मैं सोया था तो मेरे छाती पर एक ऐसा व्यक्ति आके बैठा जिसका सिर तो सिंह का था और शरीर मानव का था, और मुझे उसे नख से फाड़ना चाहा, और मैं चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। तो बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस बार तुमने जो अपराध किया इतना भयंकर नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, अगली बार ऐसा अपराध करोगे तो तुम्हारी छाती फाड़ी जाएगी। और फिर उसने अपना शर्ट निकाला, बोले देखो आज भी मेरे सीने पे नाखून के निशान है, और ये तो बात अलग है, मेरे जो सैनिक जाते थे रोकने के लिए तो जहां पर भी रोकने का प्रयास करते उनकी दाढ़ी जल जाती थी। कितने सारे सैनिक वापस आए, उन्होंने मुझे दिखाया कि सारे चेहरे पे उनकी दाढ़ी तो जली हुई है लेकिन वहां पर बड़े बड़े फोड़े आ गए आग से, तभी से हमने छोड़ दिया है। फिर चैतन्य महाप्रभु अलग प्रकार से बताते हैं कि आप लोग गाय क्यों खाते हो, और उस समय ये श्लोक बताते हैं। जब चांदका जी कहता है कि अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें अलग अलग लोगों के लिए बातें बताई है, तो हमारे कुरान में गाय खाने की परमिशन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के कारण सारे शास्त्रों को बराबर से जानते हैं, उन्होंने कुरान से लेकर उनको बताया गाय खाना वर्जित है। और फिर ये बात सिद्ध करने के बाद चांदका जी बोले, लेकिन तुम्हारे पुराण में भी तो है ना, यही बात आज हो रही है कि देखो तुम्हारा ये जो विकृक्ष है इसने भी शशक खाया था, ऐसे कोई भी बोल सकता है, तो तुम्हारे पुराणों में भी लिखा है ऐसा कि गाय का भी वध होता है, तो आप क्यों मुझे रोक रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बताते हैं, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवेरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। अभी हम देखेंगे अश्वमेध यानी घोड़े की बलि देना, गाय की बलि देना, संन्यास लेना, फल पैतृकम यानी श्राद्ध में मांस अर्पण करना, देवरेण सुतोत्पत्तिम यानी कि देवर से सुतोत्पत्ति, अपने भाई की पत्नी में पुत्र उत्पन्न करना, ये सारा कलयुग के लिए वर्जित है, ऐसे ब्रह्म वैवर्त पुराण का आधार देकर चैतन्य महाप्रभु बात सिद्ध की। लेकिन हम देखेंगे आगे जाकर कुछ समय के बाद, अभी हम लोग थोड़ा सा दूसरी जगह जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये वाक्य बताया उन्होंने संन्यास ले लिया, सोचो। अभी कुछ समय पहले, अभी इसके कुछ ही दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले, ये लीला के बाद, चांदका जी की लीला के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। कोई भी सोचेगा ये क्या बात है, बताए विवर्जित है और फिर अभी संन्यास भी ले रहे हैं, तो ये असल में हम ध्यान से देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा जिसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्वयं भगवान होने के कारण वो कोई भी चीज कर सकते हैं, स्वराट है, अभिज्ञ स्वराट है, लेकिन उन्होंने अश्वमेध नहीं किया, उसने गोमेध भी नहीं किया, लोगों के कल्याण के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया है, संन्यास लिया है। क्यों संन्यास लिया, क्योंकि संन्यास में तकलीफ किसको है, अपने आप को। अश्वमेध के किसकी तकलीफ है, घोड़े को। हाँ, गोमेध में गाय को, दूसरे जीवों के प्रति हत्या, दूसरे जीवों के प्रति क्रूरता, लेकिन संन्यास में स्वयं पर क्रूरता, अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को संकट में डालना, ये महान आचार्यों का भी लक्षण है। वासुदेव दत्त इसी मूड में थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा कि सारा संसार इतने भयंकर अवस्था में है, सब लोग पाप के कारण अपने अपने भोगों से बहुत त्रस्त है, जो उनके पुण्य है वो भी पुण्य के कारण त्रस्त है, ये सब के जो पाप पुण्य जो भी है मेरे सिर पर डालो और इनको आप लेके जाइए। यही चैतन्य महाप्रभु का मूड है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वासुदेव दत्त को आलिंगन दिया, बोला आप प्रहलाद हो इसलिए आप इस प्रकार की बात सोच रहे हो। उसी प्रकार से अभी के हमारे संत महात्मा प्रभुपाद, प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, भगवान से प्रार्थना लिखते हैं कि हे भगवान ये सारे लोगों के पाप मेरे सिर पर आने दो ताकि ये भगवान का नाम ले सके। प्रभुपाद ये नहीं जानते थे कि वो मेरा डायरी देखेगा और पढ़ेगा, नहीं, उन्होंने बहुत पहले लिख चुके हैं जब वो गृहस्थ थे, तभी गृहस्थ या संन्यास, लेकिन तब तक वो प्रभुपाद नहीं थे, बाद में निकली हुई डायरी है। भक्ति तीर्थ महाराज, इन्होंने जाकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जो कुछ भी हो रहा है आज इस्कॉन में, इतने सारे हमारे गुरुकुल के बच्चे वो चले गए हैं, इतने सारे भक्त चले गए हैं, उनको आने के लिए मुझे जो कीमत देनी मैं देने के लिए तैयार हूं। और उसके कुछ समय बाद उनको भयंकर बीमारी लग गई और चले गए। जब वो अंतिम अवस्था में थे तो भक्तों ने एक दिन वासुदेव दत्त की कहानी बताई, बहुत खुश हो गए, प्रसन्न बोले, यस वासुदेव दत्त इज माय आइडियल, इज माय आइडियल। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे ही सोच रहे थे। आज हम देख रहे हैं जयप्रता का महाराज, उनका पूरा शरीर बराबर काम नहीं कर रहा, चल नहीं सकते हैं, फिर भी केवल लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आज भी उसी प्रकार से प्रवास करते हैं जैसे पहले तो धरती पर कम आकाश में ज्यादा रहते थे इतना ट्रैवलिंग करते। Why? Because he wanted to preach, give चैतन्य महापुरुष मैसेज। लेकिन अभी 10% करते, लेकिन वो भी हम में से कोई नहीं कर सकता, इतना ट्रैवलिंग आज भी करते। Why? To give mercy। अभी कुछ समय पहले हॉस्पिटल में आए थे, हमने बोला महाराज व्हाई यू आर ट्रैवलिंग सो मच, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बॉडी, ये शरीर जो दिया है भगवान ने सेवा के लिए दिया है, सो आई एम ट्राइंग टू टेक केयर, जो भी आप लोग कर रहे हैं, एंड देन आई एम यूजिंग इट द वे इट इज, दिस इज द मोड। तो भक्तों का मूड ये होता है कि जो भी कार्य करेंगे उसमें जस्टिफिकेशन नहीं है, जो आसान चीज उसको स्वीकार करना नहीं है। कौन सी स्वीकार करनी है? जिसमें खुद को कुछ तकलीफ होगी कोई बात नहीं। तो जो महाप्रभु यहां बता रहे हैं कि ऐसा पांच चीजें नहीं करनी है, उन्होंने ही संन्यास ले लिया परम करुणा के कारण, परम करुणा पाहु द्विजन, या ऐसे करुणा करुणा के अवतार है कि इन्होंने स्वयं कष्ट देकर किसको बचाया, जो गोमांस खाते हैं। सर्व प्रभुपाद को कोई जरूरत नहीं थी। इसमें और एक दृष्टि दिखती है, कभी कभी हमारे जीवन में जब हम सुनते हैं कि इसने एक्स वाई जेड व्यक्ति गोमांस खा चुका है या खाता है, तो हमें घृणा आती है। हम सोचते हैं क्या लोग है गोमांस खाते हैं, गोमांस से छोड़ो, कभी कभी हम लोग कोई मांसाहार भी रहे उसकी तो इतनी तुच्छता से देखते हैं कि क्या व्यक्ति लोग मांस खाते हैं, ऐसे सोचते कि नहीं सोचते, बहुत बार सोचते क्या, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ पीपल, कर्मी बोलते ना, गाली है ना वो, कर्मी मांस भक्षी व्यभिचारी जुआरी। लेकिन देखो प्रभुपाद, ही वेंट टू सच पीपल, ये लोगों के पास गए, उनको ये भी नहीं बताया कि आप कितने गंदे हो, विचार करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो सब गोमांस खाते थे, उनको भी कृपा दी है। रिस्क लिया बहुत बड़ा, दिस इज एन आचार्य, उनके लिए सबसे बड़ी आसानी बात थी, कोई उनको दोष नहीं देता, वृंदावन में बैठो भजन करो, गो बैक टू गॉड है भगवत नाम के, जाओ वापस जाओ। लेकिन ये आचार्य इतने कृपालु है, ये हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत इतना जब है कि जन्म जन्मांतर तक मैं रो रो में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सारे लोग जाने चाहिए पर दुख दुखी, ये उनका स्वभाव है कि सब लोग जाने चाहिए भगवत धाम, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। दिस इज प्रभुपाद। वो क्या सोचे कि वृंदावन में रहने भजन क्या करना है मुझे, मेरे गुरु ने मुझे कहा है आप पाश्चात्य देश में जाओ वहां पर प्रचार करो। अभी कोई भी सोचेगा पाश्चात्य देश में कौन कौन सुनने वाला है, गोमांस तो हर दिन खाते हैं, हर चीज में गोमांस है, कोई भी घृणा करेगा। लेकिन प्रभुपाद ने घृणा नहीं की, उनको कहा कोई बात नहीं आओ, मैं कुछ आपको नया चीज देता हूं, गुलाब जामुन इस्कॉन बुलेट्स, गिव देम इस्कॉन बुलेट्स, गिव देम मंत्र। बहुत बार तो प्रचार भी नहीं किया, प्रभुपाद के देखो कितनी शक्ति है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र। बहुत बार कुछ आर्ग्यूमेंट होता था प्रवचन में, 10-20 मिनट का ही प्रवचन, प्रभुपाद प्रवचन को रोक देते थे, लेटेस्ट चैंट, क्योंकि चैंटिंग में क्या आर्ग्यूमेंट है, इज नो आर्ग्यूमेंट, हरे कृष्ण महामंत्र, ये प्रभुपाद है। तो हम देखेंगे कि श्लोक में गो हत्या को प्रभुपाद रोक रहे हैं, लेकिन गो हत्या करने वाले की घृणा नहीं कर रहे हैं। दिस इज ग्रेट, दिस इज गौड़ीय सिद्धांत। किसी भी घृणा नहीं करना है, कितना भी गिरा व्यक्ति होगा उसको भी ऊपर लाने का प्रयास, नित्यानंद प्रभु के जैसे, प्रभुपाद के जैसे। चांद काजी को मार नहीं डाला, उसको क्या क्या आशीर्वाद दिया चैतन्य महाप्रभु, उसको भक्त बना दिया। शायद इस्कॉन में कोई चांद काजी दास है क्या, इज देयर एनी चांद काजी दास? लेकिन हो सकता है आगे कि चांद काजी ये मुसलमान नाम लेकर उसको भक्त बना दिया। तो ये कृपा है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की कि जहां पर गोमांस को हम पहले तो हम देखते हैं ये श्लोक, हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं अभी, शुरुआत में क्या कॉन्ट्रोवर्सीज ये सब हो रहा है, लेकिन उसको जस्टिफिकेशन नहीं है, उसका बहुत अच्छी तरह से विवरण शिल प्रभुपात कर रहे हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। और महाप्रभु संन्यास गोवध सबको मना कर रहे हैं, लेकिन संन्यास ले रहे हैं किसके लिए, जो गोमांस भक्ष्य है उसका आगे जाके उद्धार करने के लिए। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम इस प्रकार के आंदोलन में हैं, जहां की दृष्टि इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि जो गो हत्या जिसके लिए कोई उपाय ही नहीं है, संसार में कोई उपाय नहीं है, हजारों ब्राह्मणों की हत्या एक गोहत्या के बराबर है। क्यों? क्योंकि भगवान, उनका नाम है गोविंद गोपाल, उनके उनके धाम का नाम है गोलोक। आज हमने ब्रह्म समय गोलोक का धाम ने निज गोलोक का नाम ने निज धाम है तले चतस्य गा रहे थे हम लोग, वहां से आई है गाय स्पिरिचुअल। लेकिन उसकी हत्या करने वाले को भी हरिनाम देना, और ये तात्पर्य उस प्रकार का जो भाव है, ऐसे श्लोकों में से भक्ति का भाव निकालने में प्रभुपाद एक्सपर्ट थे। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि श्रील प्रभुपाद के कारण हम इन चीजों को साफ साफ देख सकते हैं, जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस है पुराणों में उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कंफ्यूजन से दूर रह सकते हैं। लेकिन ऐसी जो वाणी है, ऐसा जो प्रकाश है, हमारे ज्ञान का प्रकाश है, ये देने के बाद प्रभुपाद की भी एक अपेक्षा है कि हम भी, प्रभुपाद ने कहा एटलीस्ट मेंटेन व्हाट आई हैव गिवन, करेक्ट, मैंने जो किया है उसको कम से कम मेंटेन करो। जो दृष्टि दी है श्री प्रभुपाद ने सब लोगों को एक तरह देखने की, कोई भी कितना भी गंदा हो, मांस खाने वाला हो, उसको भी एक अलग नजर से देखने। कौन सी नजर? केवल कृपा की नजर। ये कृपा किसकी है? हमारे हृदय में नहीं है, हम केवल उनकी कृपा के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। वी डोंट हैव एनी मर्सी. अगर कोई भक्त सोचता है कि आई विल गिव देम मर्सी, व्हाट मर्सी वी हैव, क्या है हमारे हृदय में? अगर हम कोई देखेगा नहीं तो इस प्रकार से मांस भी भक्षण कर सकता. लेकिन उनके आदेश के अनुसार, उनकी कृपा को लेकर, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को लेकर, गौड़ीय वैष्णव संतों की कृपा को लेकर आम जनता तक देना, उसके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है. प्रभुपाद ने स्वयं के रिस्क ली. क्या रिस्क ली? आई एम रेडी टू गो टू हेल. ये हमारे आचार्यों का हमारे लिए बहुत बड़ी देन है और उस देन को हमें आगे बढ़ाना है. ऐसे नहीं सोचना है, जैसे कभी कभी कोई लोग भक्त है, अभी इतना बड़ा मंदिर बनेगा उसको कौन मैनेज करेगा प्रभु जी, ये कोई प्रश्न है? कौन है, क्या है? यू आर सपोज टू मैनेज, राइट? कौन मैनेज, मैनेजमेंट ज्यादा नहीं करने का. लेट अस बी स्मॉल. ये भजनानंदी लोग है, क्या सोचते हैं? छोटा रहो ताकि तकलीफ नहीं, जब अच्छा होता है सब कुछ. नो, प्रभुपाद का जब अच्छा होता था, प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से रूप गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ते थे. प्रभुपाद वॉज वेरी हैप्पी इन वृंदावन. लेकिन वो क्या, कहां गए? गोमांस खाने की तरफ. चलो उधर जाओ, उनको भक्त बनाओ. ये प्रभुपाद का मिशन है. वी कैन नॉट से मेक इट अ स्मॉल लिटिल थिंग. छोटा बनाओ, छोटे में रहो, खुश रहो. कब से सबका जब अच्छा होएगा, अरे चार लोग जब करेंगे क्या होने वाला है? मेक इट बिग, ठीक है? तुम सब लोग, कोई मांस खाता है, कोई व्यभिचारी है, सबको बुलाओ, आओ. दिस इज चैतन्य महाप्रभु, ही विल गिव यू मर्सी. सो छोटा मत सोचो. भक्ति विनोद ठाकुर, इन्होंने छोटा कभी सोचा नहीं. कहां भेज दिया? अपना भारत से भेज दिया, मैकगिल यूनिवर्सिटी. कोई सोच नहीं रहा था कि वहां वो जाके क्या होने वाला है, लेकिन ही सेंट इट. क्यों? परम करुणा के कारण. तो इस प्रकार की परम करुणा हमारे हृदय में तो जागृत नहीं है, लेकिन आचार्यों की जीव वाणी का हम अगर बराबर से पालन करेंगे तो हम उनकी वाणी के इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, आगे जाकर उसको लेके जाएंगे. यह हमारा सबका कार्य है. तभी हमारा ये भाग्य जो है, आज हम जागते हैं हर दिन, तो हमारे पास सेवा की कोई कमी है? देखो, जो भक्ति इस पुरुषार्थ को गुरु के शाप से बचाकर भगवत धाम लेके गई, सोचो, ऐसी भक्ति हमारे लिए हर दिन जागने पर उपलब्ध है. हम जागते हैं, आज क्या करना है? अरे बहुत बड़ा लिस्ट है, लंबा. 24 घंटे कम है, वी हैव 24 आवर्स लेस. दिस इज भक्ति. समा बहुत बड़ा भाग्य है. वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि वी आर सो फॉर्चुनेट कि वी आर इन सच मोमेंट. व्हेन वी गेट अप, देयर इज नो टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. कैसे इसके बाद ये करूं, इसके बाद वो करूं, दुनिया के सामने जाऊं. ऑफकोर्स प्यूरिटी इज द फोर्स, वी मस्ट स्टैंड टुगेदर वेरी नाइसली, बट डोंट रेस्ट्रिक्ट, गिव इट. That is the mood of our acharyas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. किसी कोई प्रश्न है? Yes sir. वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका पाप होगा कि नहीं होगा, इससे इस व्यक्ति को क्या लेना देना है, ये हमारा प्रश्न है. समझो, वो व्यक्ति नरक में गया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसको यही पूछने का, भाई तेरा क्या है? वो गया, समझो शास्त्रों के अनुसार जो होने वाला है उसको होगा. शायद शास्त्रों ने उसको बताया क्षत्रिय हो, मांस खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारा इसके साथ संबंध क्या है? आस्क हिम दिस क्वेश्चन. लोग क्या करते हैं, ये हमारी वृत्ति है सबकी. हम लोग जो फिलॉसफी सुनते हैं उसको केवल दूसरों को ही लगाते हैं, हम अपने आप पर फिलॉसफी का असर होने ही नहीं देते। बोला आई एम आउट ऑफ फिलॉसफी, या कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं मैं पहले से ही वहां हूं, आई एम ऑलरेडी देयर, आई एम प्योर, आई डोंट नीड दिस। बोले क्योंकि वो सोचता होगा कि अरे उनका क्या होगा बेचारों का, मैं तो ऑलरेडी मैं तो मुक्त हूं, लेकिन उनका क्या होगा। या फिर ही वॉन्ट्स टू जस्टिफाई हिज ईटिंग ऑफ मीट बिकॉज ऑफ देयर ईटिंग, डोंट गेट इनटू द ट्रैप। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे, वो वहां पर विदर्भ में लोग फार्मर लोग सुसाइड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या कर रहे हैं, हमको पूछ रहे आप क्या कर रहे हो, बराबर कि नहीं? एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग, तुम तो खाली प्रश्न पूछ रहे हो, कुछ करते तो है नहीं। नॉनसेंस, यू स्टॉप दिस क्वेश्चन। और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।